नमस्कार, ज़ीरोधा पाठशाला में आपका स्वागत है। फरवरी से स्टॉक मार्केट्स में बहुत ही तेज गिरावट देखने को मिली है। कोरोना वायरस और उससे होने वाले इकोनॉमिक स्लोडाउन के डर की वजह से निफ्टी अब तक 25% गिर चुका है, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 30% और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 40% गिर चुका है। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में ये स्टॉक मार्केट्स में सबसे तेज गिरावट होगी और इस दौरान हम में से कई लोग जिनके पास म्यूचुअल फंड और स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स हैं वो चिंतित होंगे। तो हमने सिरोधा में ये तय किया कि हम ये हिंदी पॉडकास्ट चालू करेंगे जहां इंडियन स्टॉक मार्केट्स के एक्सपर्ट्स से राय लेते हुए हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में आप कैसे अपना निवेश सफलता के साथ जारी रख सकते हैं। हमारे पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में हमें बहुत खुशी है आपको बताते हुए कि हमारे साथ कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह जी मौजूद हैं। नीलेश जी के पास कैपिटल मार्केट्स में 25 साल का एक्सपीरियंस है। उन्होंने इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और रियल एस्टेट फंड्स मैनेज किए हैं एक्सिस कैपिटल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जैसी कंपनीज के लिए। नीलेश जी को बिजनेस स्टैंडर्ड से 2004 में फंड मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की उन टीम्स के वो सदस्य थे जिन्होंने बेस्ट फंड हाउस ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। नीलेश जी गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और मेरिट रैंकिंग कॉस्ट अकाउंटेंट हैं। उन्होंने एक किताब को ऑथर करी है जिसका नाम है अ डायरेक्ट टेक, ये फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर है। अब आइए हम हमारी चर्चा की शुरुआत करते हैं नीलेश जी के साथ में। नीलेश जी, ये एक सवाल है जो सभी आपसे पूछना चाहेंगे। बाजारों में अगर कोई आम निवेशक है जो देख रहा है कि बाजार गिरते ही जा रहे हैं, कभी करेक्शन अपवर्ड के साइड होता है तो फिर वापस वो 5% 10% ऊपर चढ़ जाते हैं, तो इस हालात में एग्जैक्टली हो क्या रहा है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या आप एक्सप्लेन कर पाएंगे?
सो बाजार में जो गिरावट हुई है उसका मेन रीजन डर और भय है कोरोना वायरस का। किसी को पता नहीं है कौन सी दवाई से कोरोना वायरस ठीक होता है, ये स्प्रेड भी बहुत तेजी से होता है तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बड़ा प्रेशर बनता है। उसकी वजह से दुनिया भर की गवर्नमेंट अलग अलग स्टेप ले रही है, बट ज्यादातर लोग शटडाउन और लॉकइन्स कर रहे हैं। भारत में भी 21 दिन का लॉकडाउन अनाउंस किया गया है, उस वजह से बिजनेस एक्टिविटी ठप हो गई है। तो ये डर और भय का जो कारण है कोरोना वायरस की वजह से वह मार्केट में गिरावट पैदा कर रहा है।
तो इस हालात में क्या करना चाहिए किसी आम निवेशक को, अगर डर है और बाजार गिर रहे हैं और किसी ने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीद के रखे हैं, वो देख रहे हैं कि उनके प्लान्स आर नॉट डूइंग वेल, वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो अभी प्लान ऑफ एक्शन उनके लिए क्या होना चाहिए? क्या और निवेश करें, एवरेज करें या फिर अभी कुछ ना करें?
सो एक निवेशक को हमेशा असेट एलोकेशन फॉलो करना चाहिए। जब मोमेंटम बहुत अच्छा है, मार्केट महंगा हो गया है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले। जब मोमेंटम खराब है, वैल्यूएशन सस्ता है, मार्केट बहुत सस्ता हो गया है तो रिस्क बढ़ाए, ऐड कर ले। ये असेट एलोकेशन एक ही स्ट्रेटेजी है जिससे इन्वेस्टर मार्केट में मुनाफा बना सकता है। इस वक्त कोरोना वायरस के डर के मारे मार्केट में जबरदस्त गिरावट हुई है। स्मॉल कैप स्टॉक्स तकरीबन 60% जनवरी 18 के लेवल से गिरे हैं, मिड कैप स्टॉक 35% और लार्ज कैप स्टॉक्स 15%। लार्ज कैप स्टॉक्स आज आपको 2016-17 के भाव में मिल रहे हैं, मिड कैप स्टॉक्स 2013-14 के भाव में मिल रहे हैं। ऑब्वियसली ये सारी चीजों के पीछे कारण है ये डर कि कोरोना वायरस से क्या होगा। मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, बट इतना जरूर कह सकता हूं कि जिस दिन मेडिकल सॉल्यूशन आ गया कोरोना वायरस का, इकोनॉमी और मार्केट दोनों में तेजी से ऊपर ऊपर जाएगी। ऐसा क्यों? एक जो आप लॉकडाउन कर रहे हैं, शटडाउन कर रहे हैं, उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी बिकॉज आपके पास दवाई है।
करेक्ट।
दूसरा, जो कच्चे तेल के दामों में गिरावट हुई है उसकी वजह से भारत की इकोनॉमी को फायदा होगा।
करेक्ट।
और कच्चे तेल के दाम 60-65-70 डॉलर थे, अब 25-30 डॉलर हो गए हैं। दूसरा, हम चाइना से बहुत ज्यादा माल इंपोर्ट करते थे, तकरीबन महीने का 4-6 बिलियन डॉलर। अब थोड़े लोग चाइनीज गुड्स को पसंद कम करेंगे, थोड़ा एक्सपोर्ट चाइना का कम होगा, तो वो सारे गुड्स अगर हम इंडिया में बनाएंगे तो उसका बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी में होगा।
करेक्ट।
तीसरा, आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट कोरोना वायरस के प्रभाव से इंडियन इकोनॉमी को मुक्त करने के लिए स्टेप्स उठाएंगी। दे विल ऑल्सो कट इंटरेस्ट रेट्स, रेज लिक्विडिटी, इम्प्रूव क्रेडिट फ्लो, अनाउंस फिस्कल स्टिम्यूलस टू सपोर्ट ग्रोथ, टू सपोर्ट इकोनॉमी, उसकी बेनिफिट दिखेगी।
करेक्ट।
एंड ये सब में दो बड़ी चीजें जो भारत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है, अगर हम ये 21 दिन के अभूतपूर्व लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं तो दुनिया हमें अलग नजर से देखेगी।
करेक्ट।
इटली में और भारत में कोरोना वायरस पेशेंट ऑलमोस्ट सेम टाइम पे डिस्कवर हुए। आज हमारे वहां पे जितने पेशेंट है तकरीबन 650 के आसपास, उससे ज्यादा डेथ तो इटली में रोज हो रही है।
राइट।
तो हम उनसे बहुत बड़े हैं संख्या में, हमारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके जितनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी हमने कोरोना वायरस को कंट्रोल किया। तो लोग इसे पॉजिटिवली देखेंगे। दूसरा, लोग चाइना को थोड़ा नेगेटिवली देखेंगे। टेक्सास में किसी ने 20 ट्रिलियन डॉलर का केस फाइल किया है। अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप को ट्वीट करना पड़ रहा है कि भाई चाइनीज अमेरिकन से आप सही तरीके से बर्ताव करिए।
राइट।
तो ग्लोबली एक हेट चाइना लव इंडिया हम कैंपेन खड़ा कर सकते हैं।
राइट।
तो जब पैसा लगाने का बात आएगा, लोग इंडिया में प्रेफरेंस देंगे चाइना की वजह से। जब माल सामान खरीदने की बात होगी तो इंडिया को प्रेफरेंस देंगे चाइना की वजह से, चाइना की जगह। तो ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो सकता है अगर हम ठोस कदम उठा के इस बेनिफिट को कैप्चर कर सके। तो आज मार्केट भय है, डर है, इसलिए गिर रहा है। कल मेडिकल सॉल्यूशन मिल गया तो ये सारे पॉजिटिव्स को देख के ऊपर भी आ जाएगा।
तो नीलेश जी, अभी जैसे आपने मैक्रोस की बात की, जहाँ पे इन द लॉन्ग रन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया के लिए फेवरेबल होंगी, कुछ अच्छा हो सकता है, निकल सकता है यहाँ से, एंड मैन्युफैक्चरिंग यहाँ बढ़ सकती है जैसे आपने कहा, और लॉकडाउन के बाद में अगर मेडिकल फ्रंट पे इम्प्रूवमेंट होती है तो फिर डेफिनेटली इकोनॉमिक फ्रंट में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन उसके पहले आपने एसेट एलोकेशन की बात करी, वो एक इंडिविजुअल लेवल पे एक आदमी जब ऐसी अनसर्टेनिटी को देख रहा है, बाद में कुछ भी हो, अभी बाजार गिर भी रहा हो, लेकिन अगर 20 साल के नजरिए से हम देखें कि आज हम 25 साल के हैं और हमें अगले 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है और हम इन्वेस्टमेंट नहीं रोकना चाहते, हम ये स्टैंड स्टिल में नहीं लाना चाहते अपनी प्लानिंग, तो एसेट एलोकेशन समझने के लिए अगर हम चेष्टा करें तो वो किस तरह से आप हमें गाइड कर पाएंगे?
सो जो एसेट एलोकेशन का थंब रूल है वो यह है कि 100 माइनस योर एज इज योर एलोकेशन टू रिस्क एसेट्स। लेट्स से कोई 30 साल का लड़का है तो 100 माइनस 30, 70% शुड बी हिज रिस्क एलोकेशन। उसमें इक्विटी आ जाती है, रियल एस्टेट आ जाता है, गोल्ड आ जाता है।
नीलेश जी, इस वातावरण में, इस एनवायरमेंट में ये थंब रूल चेंज नहीं होगा कि
मैं बताता हूँ उसको। अब हर 30 साल के लड़के की रिस्क प्रोफाइल एक जैसी नहीं है। कोई वीरेंद्र सहवाग है, पहले बॉल पे छक्का मारेगा।
करेक्ट।
कोई राहुल द्रविड़ है जो पहले बॉल को डिफेंड करना पसंद करेगा।
करेक्ट।
तो आप अपनी फितरत को अपनाइए, आप रिस्की है, एवरेज है, कंजर्वेटिव है, उस हिसाब से एडजस्टमेंट करिए। लेट्स अज्यूम कि हमारा जो 30 साल का लड़का है वो बेफिक्रा है, रिस्क लेने को तैयार है, से हाई रिस्क हाई रिटर्न चाहिए इस उम्र में, तो लेट्स से 70 की जगह पे वो 85% रिस्क असेट ले सकता है, 15% सेफ असेट रख सकता है। अब उसने 85-15 चलाया और मार्केट गिर गया, ऑब्वियसली उसके 85% गिर के शायद 60% हो गया होगा या 75% हो गया होगा। अब उसका रेशियो है 85-15, बट वो आज बैठा है 40-60, तो डेफिनेटली उसे डेट में से बेच के सारा पैसा अब इक्विटी में लगाना चाहिए, बिकॉज एक मार्केट सस्ता हो गया है और वो रिस्क टेकर है, ये भाव है जहां पे वो 100% इक्विटी में लगा सके और बेनिफिट कमाएगा जब मार्केट ऊपर आएगा। यही चीज रिवर्स में ले ले, एक 70 साल के बुजुर्ग है जिनको रिस्क लेना नहीं है, बहुत ही कंजर्वेटिव है,
बिल्कुल,
तो उन्होंने अपना एलोकेशन 70-30 डेट इक्विटी की जगह पे 90-10 करके रखा था बिकॉज बहुत कंजर्वेटिव थे। अब वो जो 10% है वो गिर के 5% रह गया और 90% डेट 95% हो गया, उनको 5% लॉस फिर भी हुआ इक्विटी में। पर अब समय है कि वो अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ा सके, 90-10 नॉर्मल टाइम पे था, अब उसे वो 70-30, 80-20 कर सकते हैं। एक बात समझिए, जब 100 रुपए की चीज गिर के 10 रुपए होती है, आपका 90 रुपए का नुकसान होता है, 90% नुकसान होता है,
बिल्कुल बिल्कुल,
बट जब 10 की चीज 100 होती है आपका 900% गेन होता है।
करेक्ट,
तो गिरने में एक होते हैं, कमाने में 10 मिलते हैं, इसलिए ये एसेट एलोकेशन आपकी फेवर में काम करता है, जब खोएंगे तो 1 रुपया खोएंगे, कमाएंगे तो 10 रुपया कमाएंगे।
नीलेश जी, ये जैसे आपने मैक्रोस की बात करी और फ्यूचर आउटलुक आपने बताया कि रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन हो सकता है कि बेहतरीन हो, अभी जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि अभी का जो मार्केट फॉल है इतना ड्रास्टिक इसीलिए है क्योंकि ETFs जो है बाहर के वो प्राइस एग्नोस्टिक हैं, बिना दाम देखे वो बेचते हैं, और अभी वो शायद एसेट रीएलोकेट कर रहे हैं या पैसे बाहर लेके जा रहे हैं, इसमें आप कुछ इलैबोरेट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लोग जानना चाहेंगे कि अभी का जो मार्केट क्रैश है पहले के मार्केट क्रैशेस से इतना ड्रास्टिकली डिफरेंट क्यों, इतना जल्दी क्यों ये सब कुछ फैक्टर इन हो रहा है।
सो एक फंडामेंटल रीजन ये है कि कोरोना वायरस जैसा मेडिकल क्राइसिस दुनिया ने कभी देखा नहीं। इससे पहले ये टाइप का एपिडेमिक स्पेनिश फ्लू था,
करेक्ट,
बीच में सार्स इबोला जैसी चीजें आई, बट वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड थी और जल्द ही कंट्रोल हो गई। तो ये जो डर है कोरोना वायरस का, वो लोगों को उकसाता है, प्रोत्साहित करता है यू नो सेलिंग करने के लिए। दूसरा जो आपने बताया इंडेक्स फंड का सेलिंग, वो एकदम सही है। जब इंडेक्स फंड में रिडम्पशन आता है तो वो प्राइस देख के माल नहीं बेचता, वो अपना रिडम्पशन अमाउंट देख के ऑर्डर प्लेस कर देता है, जो भाव पे निकले मुझे क्या।
करेक्ट,
अब दुनिया में काफी स्मार्ट अल्गो ट्रेडर्स हैं। अब जब इंडेक्स फंड बेचने आता है तो वो एक साथ नहीं बेचता, वो आधे घंटे के वीवैप पे बेचेगा, पूरे दिन के वीवैप पे बेचने की कोशिश करेगा, एक घंटे में बेचने की कोशिश करेगा। तो ये अल्गो है वो पिकअप कर लेता है कि कौन सा सेलिंग प्राइस के साथ हो रहा है, कौन सा विदाउट प्राइस के साथ हो रहा है, और उस हिसाब से वो अपना सेलिंग ऐड कर देते हैं। तो मार्केट में पहले इंडेक्स फंड बेचना चालू करता है भाव देखे बगैर, उसको देखते हुए अल्गो वाले अपना माल बेच देते हैं तो भाव और गिरता है, और इंडेक्स फंड की सेलिंग चालू रहती है तो भाव और नीचे आता है। तो ये जो एक करेक्शन हुआ मार्केट में इतना शार्प, पार्टली इट इज बिकॉज कोरोना वायरस का अनसर्टेनिटी है, और पार्टली बिकॉज अल्गोस एंड इंडेक्स फंड वालों ने मिलके बगैर प्राइस देके सेलिंग बढ़ा दी।
तो जैसे नीलेश जी, आप एक एएमसी के हेड हैं और इतने इन्वेस्टर्स का जो फंड्स हैं आप मैनेज कर रहे हैं, इस एनवायरनमेंट में जब इतनी नॉइज है और ETFs बेच रहे हैं एंड हो सकता है कि डिस्क्रेशनरी एंड में आपको इतनी पैनिक सेलिंग ना देखे, लेकिन किस तरह से आप इसके साथ डील कर रहे हैं, आप कैसे अपने फंड्स को डिप्लॉय कर रहे हैं इस एनवायरनमेंट में?
सो इस वक्त हम अपने जो 2008 के अनुभव है उसमें से सीख ले रहे हैं। 21,000 का सेंसेक्स है जनवरी 2008 में, दुनिया बोल रही थी 25,000 हो जाएंगे, आप NFO लॉन्च करो, जम के पैसा आता था। रिलायंस पावर का IPO भी हमने देखा कितना भर गया था, कितनी फ्रेंजी थी। अब वहां से लेके अक्टूबर 2008 तक मार्केट पानी पानी हो गया, 8,000 सेंसेक्स हो गई, 60% गिर गई, मतलब पूरा धराशाई हो गया था मार्केट। हमने 21,000 पे लोगों को बोला था कि आप अंडरवेट रहिए, इक्विटी में महंगा लग रहा है। बट 21,000 पे ही क्या हमने ये बोला था? जी नहीं, हमने तो 17,000 और 18,000 पे भी यही बोला था, मार्केट फिर भी 21,000 हुआ। बट 17,000-18,000 से लेके 21,000 तक हम यही कहते रहे कि भैया अंडरवेट रहना। जो 17,000 पे हमारी बात सुन के अंडरवेट हुआ वो गाली भी जरूर दिया होगा 21,000 पे कि इनकी क्यों सुना। फिर जब मार्केट गिरने लगा तो 14,000-15,000 के पास हमने तो बोला ले लीजिए, अब अच्छा हो गया है मार्केट। वहां से 12,000 हुआ, हम फिर भी बोले ले लीजिए। वहां से 10,000 हो गया, फिर भी बोले ले लीजिए। फिर 8,000 हो गया, वहां पे भी यही बोले। इनफैक्ट मेरा एक आर्टिकल है, एक न्यूज कॉन्फ्रेंस थी इकोनॉमिक टाइम्स की ट्राइडेंट रूफटॉप में बंबई में, जहां पे हमने 8,000 पे लेने के लिए बोला था।
राइट
मैं मतलब अपने दो ही आर्टिकल लेके चलू जहाँ पे 21,000 पे बेचने को बोला था और 8,000 पे लेने को बोला था। पैसा दिखा के लोगों को बोलू देखो मैंने मार्केट प्रिडिक्ट कर लिया था, तो वो सरासर गलत होगा। किसी के पास ये पता नहीं है मार्केट की बॉटम कहाँ पे, टॉप कहाँ पे। हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि अब मार्केट सस्ता है तो ज्यादा लीजिए, महंगा है तो कम लीजिए। हमने यही प्रोसेस 2008 में फॉलो की और 2009-2010 तक हमने जनवरी 2008 के अपने NAV लेवल को पार कर लिया था। हमने 2008 के अनुभव में यही सीखा है कि क्राइसिस आती रहती है, जाती रहती है। एक हिंदी में गाना है जो मुझे इस वक्त बहुत अच्छा लगता है।
अच्छा।
रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके है रुका सवेरा। इट्स ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द डॉन। सब कुछ खत्म होते हुए दिखता है, बट हम लोग इसमें से निकल के आएंगे। अच्छी कंपनी में निवेश किया है तो पैसा अपना वापस बनेगा, जितना लॉस हुआ है वो रिकवर कर लेंगे। तो हम अपनी मतलब 2008 के अनुभव को बेस बना के इस वक्त अच्छी कंपनी में निवेश कर रहे हैं। ऐसी कंपनी जिसमें लिवरेज कम हो, ऐसी कंपनी जिसके बिजनेस में स्टेबिलिटी हो और सर्वाइव कर सके, ये कॉम्बिनेशन हम कर रहे हैं।
तो नीलेश जी, ये जो वैल्यू आप खोज रहे हैं ऐसी कंपनी जिसमें स्टेबिलिटी आपको दिखे, अभी जो मेट्रिक है प्राइस अर्निंग्स का, हो सकता है कि उससे सही माप आपको ना मिले। किस मेट्रिक पे आप ध्यान देंगे, किस तरह से आप कंपनीज को देख रहे हैं?
आई थिंक वैल्यूएशन अकेला मेट्रिक्स आप यूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सिचुएशन बड़ी तेजी से इवॉल्व हो रही है। तो हमारा पहला फोकस है बिजनेस के ऊपर, वो बिजनेस कैसा है। साइकिल के अंदर वो बिजनेस अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा पैसा बनाएगा कि नहीं। अगर आप कमाते हैं 10% और देते हैं 12% ब्याज में, तो कंपनी कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकती। बट अगर आप कमाते हैं 12% और देते हैं 8%, तो आज नहीं तो कल आप प्रॉफिट में आ ही जाएंगे। दूसरी चीज उसकी मैनेजमेंट है। आपके पास सबसे अच्छी गाड़ी हो, लेट्स से जगुआर लैंड रोवर, बट ड्राइवर निकम्मा है तो वो गाड़ी में क्या कर लेगा?
करेक्ट।
तो ड्राइवर अच्छा होना बहुत जरूरी है। गाड़ी अच्छी हो, बिजनेस देख लिया, मैनेजमेंट जो ड्राइवर अच्छा है कि नहीं वो देखना जरूरी है। तीसरी चीज मतलब अच्छा ड्राइवर हो, अच्छी गाड़ी हो, बट रोड ही खराब हो तो फिर क्या मतलब। कितनी भी अच्छी गाड़ी हो तेजी से तो नहीं जा पाएगी। तो वैल्यूएशन देखना जरूरी है। वहां पे हम प्राइस टू बुक, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, प्राइस टू अर्निंग, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स यूज करते हैं। एसेंशियली हमारी कोशिश यही है कि ऐसी कंपनी में निवेश करें जहां मार्केट को लगता है कि इसका अर्निंग्स ग्रोथ 12% आएगा और हमें लगता है उसका अर्निंग्स ग्रोथ 15% आएगा। और ऐसी कंपनी से दूर रहे जहां पे मार्केट को लगता है अर्निंग्स ग्रोथ 20% आएगा, अपने को लगता है नहीं 15% मुश्किल से आएगा। तो ये जो आपका कॉल है अपनी रिसर्च के ऊपर, अपने बलबूते के ऊपर, वो आपका डिफरेंशिएटर बनता है।
नीलेश जी, ये जो आपने कहा कि ओपिनियन लोगों का अलग अलग हो सकता है, आप अपने व्यू पॉइंट से आप देखते हैं और अपनी रिसर्च के बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जब डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, सही तरीका हो सकता है कोई नए निवेशक के लिए कि वो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स ले ले और फंड मैनेजर पे भरोसा रखे कि वो उनके लिए सही कॉल्स लेंगे। लेकिन कुछ स्टॉक पिकर्स भी हो सकता है कि ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, और आज के दिनों में हमने देखा कि पिछले कुछ सालों से वैल्यू ट्रैप्स में जितने रिटेल निवेशक हैं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आके फंस जाते हैं, कंपनियां बैंकक्रप्ट हो जाती है। इससे बचने के लिए कोई थंब रूल है जो आपने अपनाया, जो आपको अपने एक्सपीरियंस में मदद कर चुका है, जो आप शेयर कर पाएंगे हमारे साथ?
So, इसमें कोई एक रूल नहीं है, बट मैं कहता हूं कि अपना जो हर रिटेल निवेशक है उसमें ये गुण तो जरूर है कि वो कंपनी को ढूंढ के निकाल सकता है, अच्छे प्रमोटर को ढूंढ के निकाल सकता है। खाली वो मेहनत नहीं करता कई बार। आज अपने जितने ब्रॉडकास्ट सुनने वाले हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिलेटिव की बेटी बच्चों के लिए कोई ना कोई लड़का या लड़की तो ढूंढी है। अब वो लड़का और लड़की अच्छा है वो कैसा आप ढूंढ के निकालते हैं? आपके पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, बट आप उस लड़के या लड़की को मिलते हो, उनके पड़ोसियों से, उनके रिलेटिव से उसके बारे में पूछते हो, आप रिसर्च करते हो उस लड़के या लड़की के बारे में। एक मीटिंग में कन्विंस नहीं हुए, दो मीटिंग करते हैं, फिर जब दिल को सुकून पहुंचता है आप शादी के लिए अग्रीमेंट करते हैं। इस तरह अरेंज मैरिज होती है। एंड बाय एंड लार्ज इंडिया में देखे तो अरेंज मैरिज काफी सक्सेसफुल रही है। तो हर आदमी में ये कैपेबिलिटी है कि वो अच्छा प्रमोटर, अच्छा मैनेजमेंट ढूंढ सकता है, जैसे उसने अपने बच्चों के लिए, बच्ची के लिए बहू या दामाद ढूंढ लिया है।
Correct.
बस उतनी मेहनत करनी है अच्छे प्रमोटर को ढूंढने के लिए जो वो अपने लड़की या बहू या दामाद के लिए करते हैं। एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट कितना सिंपल है। एक पीटर लिंच करके अमेरिकन फंड मैनेजर था, फिडेलिटी मैगेलन करके बहुत बड़ा फंड चलाता था। वो अपने फंड मैनेजर को एक बार एक स्कूल में लेके गया किंडरगार्टन के पास और बोला कि आप लोग स्टॉक पिकअप करेंगे और ये बच्चे लोग स्टॉक पिकअप करेंगे और आपका पोर्टफोलियो इन बच्चों से अच्छा होना चाहिए। तो फंड मैनेजर सब बोले कि कोई अच्छी कंपटीशन दो, कोई अच्छे लोगों को लेते आओ, ये बच्चों के साथ क्या खिला रहे हो। पीटर लिंच ने बोला नहीं, आई एम सीरियस, प्लीज डू इट। फंड मैनेजर से अपने अपने लैपटॉप खोले, बहुत सारा एनालिसिस किया, डेटा क्रंच किया और कुछ स्टॉक ढूंढ के निकाले। बच्चे तो अपनी फितरत में मजे कर रहे थे, उन्होंने कुछ नाम अपने आप वैसे दे दिए।
बिल्कुल
विस्मय की बात है कि एक साल के बाद बच्चों का पोर्टफोलियो फंड मैनेजर के पोर्टफोलियो से बहुत अच्छा चला।
बिल्कुल
इसके ऊपर पीटर लिंच ने लिखा है कि बच्चों ने वही स्टॉक खरीदे जो उन्हें, जो जिसकी आइटम वो कंज्यूम करते थे। जॉनसन का बेबी ऑयल यूज करते थे तो जॉनसन जॉनसन बोल दिया, क्राफ्ट की चीज खाते थे तो क्राफ्ट बोल दिया, कोका कोला पीते थे तो कोका कोला बोल दिया। ये स्टॉक्स जिसके प्रोडक्ट्स वो लोग यूज करते थे एज ए कंज्यूमर, वो लेके वो सारे फंड मैनेजर को आउट परफॉर्म कर लिए। सो इन्वेस्टमेंट बहुत कॉमन सेंसिकल है। इंडिया के जो सबसे अच्छे इन्वेस्टर है, सबसे माहिर इन्वेस्टर है, वो कोई आईआईटी, आईआईएम या चार्टर्ड अकाउंटेंट में टॉप नहीं है। वो तो सिर्फ बैचलर ऑफ कॉमर्स है, बट उनकी जो समझ है, कॉमन सेंस है, वो आज काबिले तारीफ है। वो रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, और हम सारे फंड मैनेजर्स को बहुत पीछे छोड़ देते हैं।
तो निलेश जी, जैसे आपने बोला कि काफी कॉमन सेंसिकल है इन्वेस्टमेंट करना, चाहे आप एसेट एलोकेशन भी कर रहे हैं, काफी आसानी से आप फंड्स को रीएलोकेट कर सकते हैं, ज्यादा मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज्यादा रिसर्च की नहीं है, सिर्फ आप कॉमन सेंस जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं वही यूज करनी है। लेकिन कुछ गलतियां बार बार लोग दोहराते हैं, कुछ बायसेस लोगों में होते हैं, कुछ चीजें वो हर बार सेम ही गलतियां दोहराते हैं और जानने के बावजूद वो इससे उभर नहीं पाते, इससे इससे छुटकारा नहीं ले पाते। तो ऐसी कुछ गलतियां अगर आप शेयर कर पाएंगे जो आपने देखा है लोगों ने की है और आसानी से उसका उपाय हो सकता है
तो, sure. हाँ so, जैसे एक अपना फिजिकल हेल्थ का अनुभव देखिए, तो सबको मालूम है कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। बट हर कोई ये कर नहीं पाता। जब यंग है, बेफिक्र है, तो रात भर काम करेंगे, जंक फूड खाएंगे, दिन में सोएंगे, कैसे भी लाइफ गुजारेंगे। बट जो स्मार्ट लोग हैं, वो अपने रिलेटिव के, अपने नजदीक के आदमी के एक्सपीरियंस से सीख लेता है कि ये बंदे ने ऐसे लाइफस्टाइल जी, अब 35 साल पे या 50 साल पे हार्ट अटैक आ गया, कोलेस्ट्रोल आ गया, ब्लड प्रेशर आ गया, डायबिटीज आ गया, तो मेरे को उससे बचना है, मैं आज से ही अपनी लाइफ कंट्रोल करूंगा।
हाँ।
दूसरा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार हार्ट अटैक आने के बाद सीख जाते हैं और फिर वो सारी चीजें बंद कर देते हैं जिससे उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट होती है। इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल ऐसा है। आपको पता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करिए और एसेट एलोकेशन करिए, ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अब जो स्मार्ट लोग है वो दूसरे के अनुभव से सीख लेंगे। एक बंदा ऐसा होगा जिसने जनवरी 2008 में इक्विटी खरीदी 21,000 पे, बिकॉज पिछला रिटर्न बहुत अच्छा लगता था। अक्टूबर 2008 में बेच दिया सब कुछ बिकॉज बहुत डर आ गया,
तो
उसका इक्विटी रिटर्न जीरो है। ऑन दी अदर एंड दूसरा एक बंदा था जिसने जनवरी 8 में भी इक्विटी ली, अक्टूबर 8 में भी ली, बट 2020 तक लेके बैठा रहा, तो उसका रिटर्न ठीक ठाक है। तीसरा बंदा है जिसने जनवरी 8 में इक्विटी थोड़ी कम ली, अक्टूबर 8 में बहुत सारी बटोर ली, तो उसका रिटर्न और अच्छा होगा।
राइट।
तो एक है कि मैं दूसरों के अनुभव से सीख लूं मेरे को क्या करना है। दूसरी चीज है, आप खुद अनुभव ले लीजिए और सीख लीजिए। बट पहली गलती पे सीख लेंगे तो नुकसान कम होगा, बार बार गलती दोहराएंगे तो नुकसान आपको ही भरना पड़ेगा। अगर एक बार आपको हार्ट अटैक आ जाए बिकॉज आप बहुत जंक फूड खाते थे, एक्सरसाइज नहीं करते थे, डॉक्टर ने दवाई दे के आपको ठीक किया, बट वही लाइफस्टाइल रखेंगे तो दूसरा हार्ट अटैक आने में देरी नहीं लगेगी। तो इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट कॉमनली अवेलेबल, एंड दैट्स वेयर इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम पीपल लाइक यू कि भाई आप हमें एक प्रोफाइल बना के दीजिए, ये अच्छे स्टॉक है उसमें SIP करिए, ये अच्छे म्यूचुअल फंड है उसमें SIP करिए, और फिर लॉन्ग टर्म के लिए उसे निवेश में रहने दीजिए।
निलेश जी, अभी आपने कुछ बात करी इन्वेस्टर्स के बारे में जो ऐसा नहीं है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है आपकी तरह, या फिर बहुत उन्होंने एकेडमिकली कुछ किया है, लेकिन फिर भी आप यू लुक अप टू देम, आप देखते हैं कि उनसे आपको सीखने कुछ मिल सकता है, तो ऐसे कौन से निवेशक हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा एडमायर करते हो या फिर आप बताना चाहेंगे लोगों को?
सो मैं तो हर निवेशक को एडमायर करता हूँ। एक छोटा सा, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बट छोटा सा बच्चा है, वो मतलब एक बार मुझे कॉन्फ्रेंस में मिल गया। अब मैं बड़ा फंड मैनेजर, वो एक छोटा सा बच्चा, बट भगवान की मेरे पे मेहरबानी थी, तो मैं उसके पास नम्रता से खड़ा रहा और सुनने लगा वो क्या बोल रहा था। उस बंदे ने एक कंपनी पे रिसर्च की थी।
अच्छा।
वह खुद उसके मैनेजमेंट को जाके मिल के आया और पिछले 5 साल से मिल रहा था।
अच्छा।
वो उसके डिस्ट्रीब्यूटर को मिल के आया, डीलर को मिल के आया, उसने उसकी बैलेंस शीट की पूरी रिसर्च की, उसकी जो ग्लोबल कॉम्पिटिटर थी उसकी रिसर्च की। वो जिस तरह से बयां कर रहा था, उसकी 5 साल की मेहनत मुझे 5 मिनट में मिल गई। एंड मुझे लगा कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सही काम किया है। मैं इमीडिएटली अपने रिसर्च एनालिस्ट के पास आया और बोला कि देखिए यार, मैंने ये लड़के से ये बातें सुनी, बहुत अच्छी लगी, अब तू अपना काम कर और उसके साथ बात करके देख ले। उसने भी उसके साथ बात करके डिटेल में सुन लिया, हमारे लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट बन गया वो कंपनी।
अच्छा।
अब इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सिर्फ माने जाने निवेशकों की बात ही सुननी है, वो जरूरी नहीं है,
सिर्फ कॉमन सेंस तलाशना है।
किसी से हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं।
करेक्ट।
मुझे मालूम है, मेरा एक रिसर्च एनालिस्ट हनीमून के लिए जा रहा था।
अच्छा।
और उसने बंबई से लेके गोवा मतलब रोड ट्रिप तय की।
ठीक है।
आधे रास्ते पे पहुंचा था तो ट्रैफिक जाम देखा। उस समय रायगढ़ के पास एक कंपनी थी जहां पे बहुत बड़ी लाइन लगी थी।
अच्छा।
एंड वो वहां से गुजरते 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 देखा कि यार ये लाइन इतनी क्यों है। ऑब्वियसली कंपनी में डिमांड सप्लाई बहुत ज्यादा थी, तो लोग लाइन लगा के खड़े थे माल देने के लिए, लेने के लिए. वो बंदा वहीं पे चाय पीने के लिए रुका और हनीमून पे गया हुआ था वहां पे. रेस्टोरेंट वाले को पूछता है कि रोज ऐसे ही ट्रैफिक होता है? उसने बोला हाँ, जब से ये फैक्ट्री चालू हुई है ऐसे ही ट्रैफिक है. वहीं से उसने हमें फोन किया कि भैया इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करना चालू कर दो.
अच्छा,
हनीमून पे भी उसे एक अच्छा यू नो एक्सपीरियंस मिल गया.
राइट.
तो निवेशक के लिए हमेशा एक ही चीज जरूरी है, अपना दिमाग खुला रखे.
करेक्ट करेक्ट.
एक जैन गुरु का किस्सा है. एक मेरे जैसा बंदा उनके पास गया कि महाशय मुझे कुछ सिखाइए, मैं आपके पास नॉलेज लेने के लिए आया हूँ. उसने बोला नॉलेज वॉलेज की बात छोड़, तू बहुत पढ़ा लिखा है, एक काम कर चाय पीते हैं.
ठीक.
उसका शिष्य था, वो दो कप लेके आए और चाय की किटली लेके आई. वो गुरुजी ने हाथ में चाय का कप थमाया और चाय डालना चालू किया, बट वो चाय डालते ही रहे, कप ओवरफ्लो हो गया, हाथ पे जलने लगा. ये बंदा एकदम तिलमिला उठा और गुरुजी को बोला कि गुरुजी चाय उभर रही है, कप तो पूरा भरा है.
हाँ.
गुरुजी ने यही बोला कि देख बेटा, जब तक कप भरा है तो उसके अंदर कुछ रह नहीं सकता, जिस दिन तेरा दिमाग खाली होगा मैं तेरे को ज्ञान दे पाऊंगा. तो निवेशकों का दिमाग हमेशा खाली रहना चाहिए, हर किसी से सुनते रहो, हर किसी से एब्जॉर्ब करते रहो और फिर सबकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके अपना डिसीजन लीजिए. सुनिए सबकी, करिए अपनी.
करेक्ट. तो एक आखिरी सवाल नीलेश जी, ये इन्वेस्टर्स अपना दिमाग खुला रखें, कॉमन सेंस से अप्रोच लें, सब जगह से इंफॉर्मेशन गैदर करें, लेकिन अगर कोई अभी बाजारों से फेमिलियर हुआ है, मार्केट से फेमिलियर हुआ है और निवेश की जर्नी चालू कर रहा है और उसे अगर किताबें पढ़ने का शौक है, वो कुछ सीखना चाहता है पुरानी बातों से, चाहे पीटर लिंच से या किसी से, तो ऐसी कोई किताबें हैं जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे कि अपने अभी 21 दिन के फ्री टाइम में कोई पढ़ पाए?
सिर्फ मेरे हिसाब से किताब पढ़ने में कभी एक दो तीन किताब पे नहीं रुकना चाहिए, बिकॉज क्या पता जो भी आप पढ़े आपको कहाँ पे काम आ जाए.
बिल्कुल.
जब मैं छोटा था तो मेरी घर वाले मुझे रामायण महाभारत पढ़ने को बोले.
हाँ.
एंड मैं सोचता था जब बड़ा होके कि क्या मेरे को रामायण महाभारत सिखाया. कुछ इससे अच्छा स्टॉक मार्केट की बुक सीखते तो मैं थोड़ा जल्दी अकल वाला होता. ओवर द टाइम आई हैव रियलाइज्ड दैट महाभारत इटसेल्फ इज अ फार बेटर बुक फॉर अंडरस्टैंडिंग स्टॉक मार्केट. मैं एक किस्सा महाभारत से बयां करना चाहूंगा.
बिल्कुल.
युद्ध की शुरुआत हो रही थी, लास्ट नाइट थी युद्ध चालू होने से पहले. पांडव इस तरफ थे, कौरव उस तरफ थे और भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास जाते हैं, उसको मनाने के लिए एक आखिरी अटेम्प्ट करते हैं कि युद्ध रुक जाए. भगवान कृष्ण कहते हैं तू 5 गांव पांडव को दे दे, मैं मना लूंगा उनको. दुर्योधन अहंकार में कहता है कि मैं सुई की अनी बराबर जमीन भी नहीं दूंगा, सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा. भगवान कृष्ण उसे धर्म की बात कहते हैं, अधिकार पांडव के अधिकार की बात करते हैं, सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं. तब दुर्योधन उन्हें कहता है हे भगवान कृष्ण, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति. आप मुझे ये मत बताइए क्या सही है क्या गलत है, मुझे सब मालूम है. मेरा प्रॉब्लम यह है कि धर्म है तो मैं फॉलो नहीं कर सकता, अधर्म को छोड़ नहीं सकता.
करेक्ट.
नाउ ये किस्सा हर इन्वेस्टर को समझने जैसा है. आप सभी को मालूम है क्या सही है क्या गलत है, बट जैसे हम पिज्जा से दूर नहीं रह सकते, कोला से दूर नहीं रह सकते, वैसे ही सही चीज फॉलो करने में रिस्ट्रिक्शन आ जाती है. अपने में जो दुर्योधन है वो हमें उकसाता है कि गलत रास्ते पे चला जा. अगर हम अपने मन के दुर्योधन को काबू में रख ले तो इन्वेस्टमेंट में पैसा बनाना बहुत ही इजी है. सो आप जो भी पढ़िए दिमाग खुला रखिए, जो भी पढ़िए उसको ग्रहण करिए. फाइनेंशियल बुक से ही आपको फायदा होगा ऐसा नहीं है. ऑब्वियसली वो पढ़नी बहुत जरूरी है. मार्केट इज नॉट अबाउट फाइनेंस अलोन, इट इज ऑल्सो अबाउट साइकोलॉजी. सर जॉन टेम्पलटन सेड दैट व्हेन एवरीवन एल्स इज बाइंग, व्हेन एवरीवन एल्स इज ग्रीडी, यू शुड बी सेलिंग. व्हेन एवरीवन एल्स इज सिली सेलिंग एंड एवरीवन एल्स इज फियरफुल, यू शुड बी बाइंग.
करेक्ट.
नाउ यही चीज है जो इन्वेस्टर्स को फायदा कर सकती है।
निलेश जी, जैसे आपने महाभारत का किस्सा सुनाया, तो ये जो आपके साथ हमें इंटरव्यू करने का मौका मिला, गीता में कृष्ण जी ने भी ऐसा ही कुछ कहा था अर्जुन को कि यद्यदाचरित श्रेष्ठस्तत देवेत्रो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुव्रते। अगर जो पुरुष अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ हो, वो जो भी कर रहे हैं वो दैविक काम है, वही बेस्ट काम है। अगर हमारे जैसे आम निवेशक आपको सिर्फ फॉलो कर ले, हमारी नैया पार हो जाएगी। तो आशा है कि जितने भी श्रोता थे उनकी नैया ऐसे ही पार हो जाए। आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला, एंड इफ पॉसिबल आगे भी चाहेंगे कि जब बाजार रिवाइव कर रहा हो तो वापस से एक हम और पॉडकास्ट करें आपके साथ।
आई एम श्योर ये समय बहुत ही जल्द आएगा, जैसा मेडिकल सॉल्यूशन मिल गया कोरोना वायरस का, मार्केट और इकोनॉमी दोनों में रिकवरी दिखेगी।
थैंक यू निलेश जी।
थैंक यू।